प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
आइए श्रोता, इसी सुंदर गीत के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, किंतु इससे पूर्व के आज के कार्यक्रम को आरंभ करें अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ्य मांगें। हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु और प्रेमी पिताजी, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इन पवित्र क्षणों के लिए जो आपने अपनी कृपा से हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस वचन को समझने और ग्रहण करने के लिए हमें बुद्धि प्रदान करने की कृपा करें, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें और अपने वचन को हमारे लिए सच्चा और वास्तविक बना दें। हमारे मध्य में उत्पन्न होने वाली समस्त बाधाओं को प्रभु आप दूर कर दें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से रोमियो की पत्री का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम रोमियो की पत्री के 10वें अध्याय के पांचवें पद से आगे अपने कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। हमारा विषय होगा इसराइल की वर्तमान दशा अर्थात स्थिरता। सो आइए हमारे साथ देखें रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 5 से 15 पद। पांचवें पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मूसा लिखता है कि जो व्यक्ति उस धार्मिकता पर आचरण करता है जो व्यवस्था पर आधारित है तो वह उसी धार्मिकता के द्वारा जीवित रहेगा। 4वें अध्याय में हमने पढ़ा, क्योंकि प्रत्येक विश्वासी के निमित्त मसीह धार्मिकता के प्रति व्यवस्था का अंत है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था का लक्ष्य है और व्यवस्था का लक्ष्य यह है कि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहराया जाए। आप व्यवस्था द्वारा जो धार्मिकता अर्जित करेंगे वो आपकी धार्मिकता होगी और उसे आप परमेश्वर की धार्मिकता नहीं कह सकते, क्योंकि आपने अपने प्रयासों से अपने परिश्रम से उसको प्राप्त किया है। ये वो धार्मिकता है जिसके विषय में लेवी व्यवस्था की पुस्तक के 18वें अध्याय के 5वें पद में और व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 6वें अध्याय के 25वें पद में बताया गया है। ये वो धार्मिकता है जिसके लिए इसराइली सीनै पर्वत की वाचा के अंतर्गत बुलाए गए थे। तब 6 और 7 पदों में हम पढ़ते हैं, परंतु वह धार्मिकता जो विश्वास पर आधारित है ऐसा कहती है, अपने मन में ये न कहना स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मृतकों में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। अब यहाँ प्रेरित पौलुस उस धार्मिकता को जो व्यवस्था पर आधारित है और उस धार्मिकता को जो विश्वास पर आधारित है उसको हमारे समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। व्यवस्था पर आधारित धार्मिकता ये पुराने नियम की धार्मिकता है, नए नियम में वो धार्मिकता है जो विश्वास पर आधारित है और उस धार्मिकता के अनुसार मनुष्य ऐसा नहीं कहता कि स्वर्ग पर कौन जाएगा कि यीशु मसीह को नीचे उतार कर लाए, अधोलोक में कौन जाएगा जो मसीह को मृतकों में से जिलाकर ऊपर लाए, किंतु वह इस बात पर विश्वास करता है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वो पापियों के लिए अपना प्राण दें, कब्र में गाड़े जाएं और परमेश्वर उन्हें तीसरे दिन मृतकों में से जीवित करता है। ये एक व्यक्ति का विश्वास है और इस विश्वास के द्वारा वो धर्मी ठहराया जाता है। आपको मसीह की खोज में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग मसीह को किसी तीर्थ स्थान पर या विशेष सभा में या विशेष वेदी पर खोजने का प्रयास करते हैं। मित्रवर, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता है कि वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में, तेरे हृदय में पाया जाता है और उद्धार उसी स्थान पर उसी दशा में उपलब्ध है जिसमें आप हैं। इसका तात्पर्य यह है। तो 8वें पद में प्रभु का वचन स्पष्ट करता है, परंतु वह क्या कहती है अर्थात धार्मिकता क्या कहती है, कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में है अर्थात विश्वास का वह वचन जिसका हम प्रचार करते हैं। तब 9वें और 10वें पद में प्रेरित पौलुस से एक महत्वपूर्ण संदेश, एक सिद्धांत हमारे समक्ष रखते हैं कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया तो तू उद्धार पाएगा। आज अनेक लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने वाले को सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास का अंगीकार करना चाहिए, परंतु यहां प्रेरित पौलुस का तात्पर्य ऐसा नहीं है। उनका तात्पर्य यह नहीं है कि आप किसी विशाल आत्मिक सभा में जाएं और अपने विश्वास का प्रदर्शन करें और चिल्ला चिल्ला कर इस बात को बताएं। मैंने अनेक लोगों को देखा है कि वे आत्मिक सभाओं में प्रचारक के निमंत्रण पर सामने आते हैं और अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हैं, परंतु वे वास्तव में उद्धार पाए हुए लोग नहीं हैं। प्रेरित पौलुस इस प्रकार के सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास के प्रकटीकरण के लिए आपसे नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया तो तू उद्धार पाएगा। मैंने किसी विशाल आत्मिक सभा में अपना जीवन प्रभु को नहीं सौंपा, ना अपने विश्वास को इस प्रकार प्रकट किया। मैंने अत्यंत साधारण रूप से अपना जीवन प्रभु को सौंपा। मुझे प्रभु के एक दास ने प्रभु की ओर से निमंत्रण दिया और मैंने तुरंत उसे स्वीकार किया। परंतु जिन्होंने उस बड़ी सभा में सामने आकर विश्वास का प्रदर्शन किया वे सब वापस लौट गए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन तथा अपने विश्वास के प्रकटीकरण में समन्वय स्थापित करना चाहिए, उन्हें एक मत होना चाहिए। सर्वप्रथम मुख और हृदय में तालमेल अर्थात सामंजस्य का होना अत्यंत आवश्यक है। हृदय का तात्पर्य है आपका संपूर्ण व्यक्तित्व। पौलुस कहते हैं कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में ये विश्वास करे। दसवें पद में वो कहते हैं मनुष्य तो हृदय से विश्वास करता है और जिसका परिणाम धार्मिकता होता है और मुंह से अंगीकार करता है जिसका परिणाम उद्धार होता है। सो हृदय का तात्पर्य है आपका संपूर्ण व्यक्तित्व। अनेक लोग हैं जो मुख से तो परमेश्वर की उपासना करते हैं परंतु उनका हृदय परमेश्वर से बहुत दूर है, और इसलिए जब आप सार्वजनिक रूप से अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हैं तो आपको ये ज्ञान भी होना चाहिए कि आपका हृदय आपके मुख के साथ एक मत है या नहीं। यदि आपका अंगीकार विश्वास रहित है तो इसका कारण आपका कपट या आपका पाखंड है या आपका डरपोकपन भी हो सकता है। मेरे मित्र, आपके मुख और हृदय में तालमेल होना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य मुख से अंगीकार करता है और मन में विश्वास करता है तो इसका परिणाम धार्मिकता होता है और अंगीकार करने का परिणाम उद्धार है। मनुष्य को यह विश्वास करना है कि परमेश्वर ने यीशु को मृतकों में से जीवित किया है। इसका अर्थ है कि मसीह का पुनरुत्थान सुसमाचार का हृदय है, जैसा कि हम रोमियों की पत्री के 4:25 पद में पढ़ चुके हैं कि वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। इसलिए ये दो बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं कि मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना और मन में विश्वास करना कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, अर्थात यीशु मसीह की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान पर हृदय से विश्वास करना, इसका परिणाम उद्धार है। और ये उद्धार ही परमेश्वर के द्वारा दी गई धार्मिकता है। तो आगे हम पढ़ते हैं क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदी और यूनानी में कोई अंतर नहीं है क्योंकि वही प्रभु सबका प्रभु है और उन सब के लिए जो उसको पुकारते हैं अत्यंत धनी है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब यहां पर प्रभु का वचन स्पष्ट करता है कि यहूदी और यूनानी अर्थात गैर यहूदियों में कोई अंतर नहीं है। अंतर यदि है तो विश्वासी और गैर विश्वासी का है। यहां प्रश्न उद्धार का है क्योंकि सभी ने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। उद्धार केवल मसीह द्वारा है और इसलिए जिसे उद्धार प्राप्त करना है उसे मसीह के मार्ग से आना है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं जा सकता, और प्रेरित पौलुस भी इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि तुम पुराने नियम के नियमों व धर्म विधियों तथा कर्म कांडों द्वारा या मूसा की व्यवस्था द्वारा परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। उद्धार अर्थात मोक्ष का प्रस्ताव समस्त मानव प्राणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उसका आधार वही दया और विश्वास है, परमेश्वर की दया और आपका विश्वास। मानव का कार्य केवल इतना है कि वो परमेश्वर की दया का लाभ उठाए, सुसमाचार सुने तथा विश्वास लाए। तब 13वें पद में हम वर्तमान मोक्ष यहूदी और गैर यहूदी दोनों के लिए इस विषय में पढ़ते हैं। 13वें पद में हम पढ़ते हैं जहां लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई, आप क्या अर्थ लगाते हैं इस शब्द का? संभवतः आप भी वही अर्थ लगा रहे हो जो हमने पवित्र शास्त्र से पाया है। ये वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है। इसे प्रेरित पौलुस ने पुराने नियम की पुस्तक से लिया है, योएल नबी की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय 32वां पद। यद्यपि पौलुस यहूदियों के लिए ये संदेश दे रहे हैं, परंतु ये मेरे और आपके लिए भी है, क्योंकि हम जो कोई भी हों, हम इस जो कोई में सम्मिलित हैं। और संत पौलुस यहां स्पष्ट बता रहे हैं कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। और प्रभु परमेश्वर भी यही कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। और यहां पौलुस कहते हैं कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, ये प्रभु कौन है? ये प्रभु हैं जगत के उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर के पुत्र, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। तब अग्रिम पदों में हम पढ़ते हैं, फिर वे उसे क्यों पुकारेंगे जिस पर उन्होंने विश्वास ही नहीं किया, और वे उस पर कैसे विश्वास करेंगे जिसके विषय में उन्होंने सुना ही नहीं? भला वे प्रचारक के बिना कैसे सुनेंगे, और वे प्रचार कैसे करेंगे जब तक कि भेजे ना जाएं? ठीक जैसा कि लिखा है, उनके पांव कैसे सुहावने हैं जो भली बातों का सुसमाचार लाते हैं। प्रिय मित्र, यहां ये पद ध्यानपूर्वक सुनने के योग्य है। पौलुस इन पदों में अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहूदी पौलुस का उपहास करते थे, उनसे घृणा करते थे, वे तालियां पीटते थे, रोमी उन्हें पागल कहते थे, और इसलिए वह उन्हें स्पष्ट कर रहे हैं कि पुराने नियम की इस सत्यता को यदि कोई बताने वाला नहीं होगा तो वे कैसे जानेंगे। मैं इसलिए बताता हूं कि लोग जानें और विश्वास करें। और वो स्पष्ट करते हैं कि मेरा उद्देश्य केवल यह है कि जब मैं बताऊंगा तब आप सुनेंगे, और जब सुनेंगे तो विश्वास लाएंगे। आज भी सुसमाचार का प्रचार इसी आधार पर किया जाता है। प्रेरित पौलुस यशाया नबी की पुस्तक के 57वें अध्याय के 7वें पद का उद्धरण करते हुए कहते हैं कि उनके पांव कैसे सुहावने हैं जो भली बातों का सुसमाचार लाते हैं। मेरे मित्र, आज परमेश्वर का संदेश मानव जाति के लिए आशीष का संदेश है, उद्धार का संदेश है, भली और मधुर बातों का संदेश है। वास्तव में मूसा की व्यवस्था तो निश्चय ही शुभ संदेश नहीं था, यह तो मृत्यु का संदेश था। किंतु मेरे मित्र, सुसमाचार का संदेश, प्रभु यीशु मसीह का संदेश, ये वास्तव में मानव जाति के लिए सुसमाचार है, शुभ संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, कब्र में गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जीवित हुए, ताकि विश्वासी प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के द्वारा परमेश्वर के समक्ष धर्मी ठहराया जाए। दूसरे शब्दों में, प्रभु यीशु मसीह पापों की क्षमा के लिए मारे गए और धर्मी ठहराए जाने के लिए जीवित किए गए। ये वास्तव में शुभ संदेश है। मुझ अयोग्य पापी के लिए ये वास्तव में शुभ संदेश है। मैं अपने कर्मों द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता, उनकी संगति को प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा मैंने इस अनुग्रह को प्राप्त किया है। सो आइए 16वें पद से आगे देखते हैं, जहां लिखा है, परंतु उन सभी ने सुसमाचार पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? बहुधा प्रचारकों के मुख से ये सुनकर आश्चर्य होता है कि हमारे उपदेश के द्वारा एक विशाल जन समूह ने मसीह यीशु को स्वीकार किया, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वो संख्या बहुत छोटी होती है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो विश्वास करते हैं। भविष्यद्वक्ता प्रश्न करता है कि किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? बहुत थोड़े लोगों ने। प्रभु यीशु ने कहा, थोड़े हैं जो सक्रिय मार्ग से प्रवेश करेंगे। सो बहुत थोड़े लोगों ने संदेश पर विश्वास किया है। आगे लिखा है, अतः विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। अब यहां एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण कथन है। विश्वास किसी दर्शन अर्थात फिलॉसफी या किसी मनोवैज्ञानिक ढंग से या किसी प्रकार के राजनीतिक दबाव से नहीं आता या नहीं जाता, ये केवल परमेश्वर के वचन के प्रचार से आता है। मेरे श्रोता मित्र, जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे, आप विश्वास नहीं ला सकते। 18वें पद में बताया गया है, परंतु मैं कहता हूं, क्या उन्होंने वास्तव में कभी नहीं सुना? उन्होंने अवश्य सुना है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उनका प्रचार संसार के कोने कोने तक पहुंच गया है। यहां प्रेरित पौलुस भजन संहिता 19 के चौथे पद को उद्धृत कर रहे हैं, जो ये बताता है कि आकाश मंडल परमेश्वर की महिमा की साक्षी दे रहा है, परंतु पद 18 में इसे सुसमाचार प्रचारक की आवाज के लिए, उसकी वाणी के लिए प्रयोग किया गया है। ये दर्शाने के लिए कि इसराइल जाति ये बहाना नहीं बना सकती कि उसे छुटकारे का सुसमाचार सुनने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि प्रचारक प्रत्येक स्थान पर पहुंचे हैं और उन्होंने इस छुटकारे के सुसमाचार को सुनाया है। मैं ये नहीं कहता कि पौलुस रेडियो के विषय में कह रहे हैं, परंतु रेडियो के द्वारा सुसमाचार प्रत्येक स्थान पर पहुंचा है। रेडियो का सुसमाचार प्रचार में महत्वपूर्ण योगदान है। 19वें पद में लिखा है, परंतु मैं कहता हूं, क्या इसराइली नहीं जानते थे? निश्चय वे जानते थे। सर्वप्रथम मूसा कहता है, जो एक जाति नहीं है, जिसके द्वारा मैं तुम में जलन उत्पन्न करूंगा, और एक मूढ़ जाति के द्वारा मैं तुम में क्रोध उत्पन्न करूंगा। मित्र, यहां प्रेरित पौलुस व्यवस्था विवरण के 32वें अध्याय के 21वें पद का उद्धरण कर रहे हैं। आज परमेश्वर अन्य जातियों में से अपने लिए लोगों को बुला रहा है। उसने मुझे बुलाया है, उसने आपको बुलाया, उसने असंख्य लोगों को बुलाया है, उनसे उसने अपने लिए कलीसिया बनाई है, अपना परिवार स्थापित किया है, कलीसिया जो परमेश्वर का परिवार कहलाता है। परमेश्वर ने स्वयं उसको स्थापित किया है। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के राज्य में राज्य करेंगे। उधर उसने इसराइल की संख्या केवल 144,000 सीमित कर डाली है, किंतु कलीसिया की कोई संख्या सीमित नहीं है। ये एक बड़ी भीड़ है जो परमेश्वर के राज्य में सम्मिलित होगी, असंख्य लोग। और पौलुस इस विषय में अग्रिम अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। 23वें पद में हम पढ़ते हैं, फिर यशाया बड़े साहस के साथ कहता है, जो मुझे खोजते नहीं थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मेरे विषय में पूछते भी ना थे मैं उन पर प्रकट हो गया। परंतु इसराइल के विषय में वो कहता है, दिन भर मैं अपने हाथों को अनाज्ञाकारी और हठी प्रजा की ओर बढ़ाए रहा। ये कैसी तुलना है मेरे मित्र! यहां यशाया 65वें अध्याय के प्रथम पद का उद्धरण है। हमने देखा कि यशाया नबी ने भी अन्य जातियों के उद्धार की भविष्यवाणी की है। अन्य जाति जो अंधकार में थे, उन्होंने मसीह यीशु को पा लिया, मसीह यीशु जो जगत की ज्योति हैं। जबकि इसराइलियों ने, जिनके पास पुराना नियम था, पवित्र लेख थे, और उनके द्वारा उनके पास मसीह का पूर्व ज्ञान था, ये परमेश्वर ने उन्हें प्रदान किया था, और इसलिए इसराइल के पास कोई बहाना नहीं। उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को स्वीकार नहीं किया। परमेश्वर पिता कहते हैं कि उन लोगों ने, जो मुझे पूछते बिना थे, खोजते बिना थे, उन्होंने मुझे पा लिया, परंतु जिनके लिए मैं दिन भर हाथ फैलाए रहा, उन्होंने मुझे नहीं पाया, उन्होंने मुझे त्याग दिया। प्रिय मित्र, कोई नहीं जानता कि परमेश्वर इस जाति के लिए कैसा अनुग्रहकारी रहा है, भविष्य में वह कैसा अनुग्रह इन पर करेगा। सो इसी वचन के साथ हम दसवें अध्याय को समाप्त करते हैं। इससे पहले कि हम दसवें अध्याय को समाप्त करें, आइए इस अध्याय की मुख्य मुख्य बातों पर दोबारा से ध्यान दें। सबसे पहले हमने देखा कि अपने जाति भाइयों के लिए प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रत्येक विश्वासी के निमित्त मसीह धार्मिकता के प्रति व्यवस्था का अंत है। दूसरी बात, विश्वास द्वारा उद्धार, इसको हमने 9 और 10 पदों में देखा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तीसरी बात हमने देखी, परंतु जिस पर विश्वास नहीं उसे वे क्यों पुकारेंगे, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो उन्हें नहीं पुकारेगा, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करेंगे, प्रचारक के बिना वे कैसे सुनेंगे और बिना भेजे वे कैसे प्रचार करेंगे। मेरे मित्र, मसीह को पुकारने के लिए और उद्धार पाने के लिए 4 अनिवार्य बातें हैं। पहली बात, परमेश्वर की ओर से प्रचारक का भेजा जाना, सुसमाचार का सुनाया जाना, ये दूसरी बात है, और तीसरी बात है सुसमाचार को सुनना, और चौथी बात है संदेश पर विश्वास लाना। और इस प्रकार सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और सुनना मसीह के वचन से, अर्थात वो संदेश जो मसीह अपने संदेश वाहकों द्वारा बोलता है। सो इस प्रकार परमेश्वर का उद्धार यहूदी तथा गैर यहूदी दोनों के लिए उपलब्ध है। जो कोई विश्वास के साथ प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब इन्हीं वचनों के साथ हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दें और आपकी सहायता करें कि आप प्रभु पर विश्वास ला सकें। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।